सेना ऐसा समझ करके सुग्रीव बानरों से भी ज्यादा हम लोगों का आदर करेगा और जरा से भी ये बानर जरा से भी इधर उधर सावधान हुए एक साथ इन पर आक्रमण कर देंगे, इन सबको मार देंगे और बिना युद्ध किए भी आप जीत जाएंगे। अरे तुमने उपाय तो बड़ा अच्छा बताया, परंतु वहां पर कुंभकर्ण का बेटा बैठा हुआ था निकुंभ। निकुंभ ने कहा कि अरे अरे ये क्या तुम माया फैलाते हो, एक मैं अकेला ही बहुत हूँ, अरे मारना इतना ही तो काम करना है, इतने के लिए क्यों तुम भरत का नाम ले हो, क्यों तुम राम का नाम ले हो, क्यों दूसरी बात करो, मैं अकेला पर्याप्त हूँ, लाओ मेरा शस्त्र लाओ मैं जाता हूँ। ठहराया गया, अरे सब निर्णय कर ले। वज्र ने कहा कि देखो अकेला मारने का जहाँ नाम आता है ना वह हमको बहुत बुरा लगता है, हम अकेले खुद बैठे जब आप लोग अकेले क्यों होते हो जी, हम अकेले बहुत है। ऐसे सबने अपना अपना उत्साह दिखाया। निकुंभ ने कहा और वहां सुस्तग्न यज्ञ को सब बड़े बड़े बैठे थे राक्षस, उन सब ने मिलकर के कहा कि देखो महाराज इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम 15-20-25 राक्षस जाएं और इसी समय जाकर के हम राम जी का वध करके सुग्रीव का लक्ष्मण का वध करके आ जाए, हनुमान को भी मार के आ जाए ताकि फिर लंका की तरफ कोई आंख उठा करके भी न देखे। सब शस्त्र लेके खड़े होंगे, तैयार होंगे। विभीषण जी का ठहरी, विभीषण जी ने जब ठहरी की बात की तो सब रुक गए। विभीषण जी ने कहा कि महाराज ये चार उपाय बताए राजाओं के लिए, साम दाम भेद और दंड, ये चार बताए। चार में आपको मालूम है कि इनकी चार की संख्या में पहले पहले साम क्यों आता है, फिर दाम क्यों आता है, फिर भेद क्यों आता है, अंत में दंड क्यों आता है। साम का अर्थ यह है कि पहले पहले कोई भी काम करो अपनी तरफ से कलह मत पैदा करो, शांति जहां तक हो सके शांति के दरवाजे सब तरह से खोल करके थोड़ा झुक करके भी दब करके भी अपनी बात को थोड़ा झुका करके भी शांति पहले प्राप्त करो। शांति के लिए सबसे पहले नाम साम, साम कह दो चाहे शांति कह दो एक ही बात है, शांति प्राप्त करो। यदि हमने शांति को खो दिया तो उचित नहीं है। पहले देख लो कि शांति से काम चलता है कि नहीं चला, चलो इसको खत्म करो। अब है दाम, दाम माने थोड़ी करड़ा व्यवहार करना, थोड़ा सा कठोर व्यवहार करना, दमन करना, कहते इसके द्वारा आप धमकाओ करो ये काम करो, उससे नहीं चले तो फिर भेद डालो आपस में, हमारे शत्रु के क्या उनके क्या किसकी मित्रता, ऐसे करके भेद डालो। तीनों उपाय काम नहीं आए तो अंतिम उपाय तो लड़ाई झगड़ा कलह चढ़ाई करना, लड़ना मारना पीटना, ये अंतिम उपाय होता है। इसलिए आप पहले सोच लो कि तीन उपायों की आपने कोई किसी प्रकार से उपयोगिता समझी है कि नहीं। नहीं समझी है। कोई कहेगा कि समुद्र का जिसने लंघन किया और लंका में जो आया है और वो अपने सीता से जो मिला है उस हनुमान ने क्या कसूर किया, कोई कह सकते हो हनुमान का क्या कसूर है, वो समुद्र का लंघन करके हमारी पुरी में क्यों आया है। ठीक है महाराज, आपने समुद्र का लंघन करके जनस्थान में जाकर पंचवटी से सीता का हरण क्यों किया, रावण ने कुछ भी जवाब दिया। तो जब आप वहां से जाकर सीता का हरण कर सकते हो, रावण ने कहा कि विभीषण उसने हमारे 14,000 सैनिकों को मारा, खरदूषण को मारा, हमारे भाई बंधुओं को मारा, तो हमें क्या करना था, बिल्कुल मारा, गलत काम किया, तो आप स्वयं जाते शस्त्र लेकर के, हम सबको लेकर चलते, हम सब जाते राम के साथ युद्ध करते, सीता के हरण का क्या कारण रहा। अवश्यम प्राणिनाम प्राणः रक्षितव्यः यथा बलम्। देखो हर प्राणी को अपने प्राणों की रक्षा का अधिकार होता है। अशोक वाटिका में उसने भी उजाड़ किया था तो सैनिक लोग मारने के लिए आए, तब वो मारने के लिए आया, वैसे तो मारने के लिए नहीं गया। तो आपने पहले पहले कलह किया है, कलह करके आपने सीता का हरण किया है, सीता को आपने दिया है, वो सीता को मांगने के लिए आया था। अतः मेरा तो यही आपसे निवेदन है, सबसे पहला उपाय जो शाम का है उसको प्रयोग में लाओ और निरंतर बैर को छोड़ करके सीता आप राम जी के सामने समर्पित कर दो। जब तक राम बाणों के द्वारा लंका को विदीर्ण न कर दे, लंका के टुकड़े न कर दे, लंका को फाड़ न दे, तब तक आप सीता को दे सकते हो। ऐसी खराब परिस्थिति न आए, सीता को आप दे, और सीता के देने से सब प्रकार का कलह शांत हो जाएगा। राम जी के तीखे बाण एक बार छाती में घुस गए तो फिर वो प्राण लेकर के निकलते हैं। ऐसा दिन लंका में न आया, आप सीता को समर्पित कर दीजिए। विभीषण जी के वचनों को सुनकर के रावण ने कहा, विभीषण विचार करेंगे, हम सोचेंगे। इतना कहकर के सभा को विसर्जित कर दिया। रावण अपने महल में चला गया। सब सो गए थे, प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होकर वे एक सभा करने वाले थे। सभा भवन में जाने से पहले विभीषण रावण के महल में पहुंचे, और वो रावण का महल बड़ा विचित्र था, और उसमें रावण देखो तो जैसे कोई बहुत बड़ा काजल का पर्वत वहां पर बैठा हुआ हो, बहुत बड़ा कक्ष, और जिसमें बहुत सी स्त्रियां, बहुत से पुरुष वहां पर बैठे हुए, और जो है चारों तरफ राक्षसों से वो घिरा हुआ मकान, तरह तरह से उसमें आवाजें आए। ऐसे मकान के अंदर, ऐसे महल के अंदर विभीषण ने प्रवेश किया। जो ही विभीषण ने प्रवेश किया, सबने विभीषण को जो है प्रणाम किया। विभीषण जी महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद विभीषण जी ने मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों को देखा, उनका वंदन किया, और आगे जाकर वो अपने भाई के साथ महल में बैठ गए, और बैठ करके अपने भाई से कहने लगा, महाराज राक्षसराज, जब से आप सीता को लेकर यहाँ आए हैं, तब से लंका के अंदर अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। आप इन ब्राह्मणों से पूछ लीजिए कि आप यज्ञ के अंदर जो आहुति देते हैं वो अग्नि कितनी प्रज्वलित होती है, एकदम थोड़ी सी इतने प्रज्वलित हुई वापस शांत हो जाती है। आप गऊ के दूध को देख लीजिए, उनके यहाँ दूध निकलता है या दूध धोने के ऊपर उनका खून निकलता है। आप इन गधों की आवाज, ऊंटों की आवाज और घोड़ों की आवाज, इनसे आप विचार कर लीजिए कि क्या आपके ऊपर जो है संकट आने वाला है। ये गीत आजकल बहुत हमारे महलों के ऊपर बैठते रहते हैं। इन गीतों को देख देख करके लगता है कि बड़ा भारी अपशकुन होने वाला है। हमने सुना है खुद ने कि रात में गिदड़ियां बहुत जोर जोर से रोती हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है, आज की जब सभा हो उस सभा के अंदर आप इस भावना को मन में रखो कि सीता राघव को देनी है। ये बात मैं कोई लोभ से नहीं बोल रहा हूँ, क्रोध से नहीं बोल रहा हूँ, भय से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक यथार्थ और यथार्थ धर्म की बात बोल रहा हूँ। ये बड़ी भारी दोष की बात होगी कि दूसरे की स्त्री को आप अपने अंतःपुर में ला करके रखे हैं, और फिर यदि उसके द्वारा मांगने पर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य है। अतः मेरे वचनों पर आप विचार कीजिए। रावण ने कहा, ठीक है विभीषण, तुमने जो बात कही है हमको मन से नहीं सुहाती। तुमने अपनी तरफ से हित भरी बात कही होगी, तुमने अपनी तरफ से पवित्रता से बात कही होगी, परंतु मैं भी तो कुछ सोच रहा हूँ। महाराज, मैं आपको फिर कह दूं, मैं भय से नहीं देख रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है। महाराज, देवताओं को आपने जीत लिया, आपने इंद्राजी को जीत लिया, मैं किस प्रकार से आपको कह सकता हूँ कि आप कोई शक्तिहीन राजा हो। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका कार्य अच्छा नहीं है और इसका परिणाम अच्छा नहीं है। अभी इसके अपशकुन प्रकट हो गए हैं, ये अपशकुन हमको बताते हैं कि हमको सावधान हो जाना चाहिए। इतना कह करके विभीषण जी महाराज वहाँ से विदा हो गए, और अब इधर रावण ने अपने प्रधान प्रधान सेनापति, मंत्री और सब लोगों को अपने महल में आने का निमंत्रण दे रहे हैं।
भगवान की विशेष कृपा से होने वाले इस वाल्मीकि रामायण के कथा महोत्सव का विशेष प्रसंग सुनाया जा रहा है। भगवान की लीला अगम्य है और वो किसी तर्क के द्वारा, किसी युक्ति के द्वारा और किसी अन्य उपाय के द्वारा समझ में नहीं आती है। भगवान की लीला तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और जितनी हमारी भगवान में श्रद्धा होगी उतनी ही वो लीला हमें प्रिय लगती है और जितनी लीला प्रिय लगती है उतना ही लीला का स्वरूप द्विगुणित होता हुआ समझ में भी आने लगता है। परंतु वो केवल अपने आप के लिए है। भगवान ने ये लीला ऐसे क्यों की, इसका समाधान अपने लिए ही होता है। हम दूसरों को किसी प्रकार से युक्तियों से भगवान की लीला के विषय में समझा नहीं सकते, क्योंकि भगवान की लीला श्रद्धेय है, श्रद्धा योग्य है। भगवान की लीला श्रद्धा के द्वारा पेय है, श्रद्धा के द्वारा श्राव्य है, श्रद्धा के द्वारा ग्राह्य है और श्रद्धा के द्वारा ही हमारे हृदय में स्थाप्य है। कैसी विलक्षण श्रद्धा हमारी हो वैसी तो है नहीं, लेकिन आश्चर्य है कि भगवान की लीला सुनने में भगवान की श्रद्धा जागृत होती है। भगवान अपने परिवार के बीच में बैठे हुए लीला सुनते हैं। किस अवस्था में लीला सुनते हो, जिस अवस्था में भगवान को सीता को भगवान ने त्याग दिया है, जिस अवस्था में सीता रसातल में चली गई है, भगवान के पास में सीता नहीं है, सीता के वियोग में दुखी रहने वाले, भगवान को आनंद देने वाले, दूसरे शब्दों में कहे कि सबको आनंद देने वाले, आनंद स्वरूप भगवान को परम आनंद देने वाली ये भगवान की कथा है। भगवान श्री राम ने भी सांसारिक लीलाएं करते हुए दुख की जब लीला की तो उसमें कथा श्रवण की भी लीला की। भगवान ये उपदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारे ऊपर भी किसी न किसी प्रकार का दुख तो आता ही है, उस दुख में तुम किसी का सहारा मत लो, कोई सहारा तुम्हारे दुख को पूरा नहीं कर पाएगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग परे तब दोनों को जा रहे हैं। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दोनों को फारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब भेद पुराण पुकारे। हम उनका आश्रय लेना चाहते हैं जो स्वयं किसी के आश्रित रहने वाले हैं। बहुत गहराई से देखना है। हम सोचते हैं कि हम धन के द्वारा हमारी जलन को मिटा लेंगे, परंतु जिनके पास धन है वो क्या उनकी जलन मिट गई है, और वो धन क्या हमारे बिना शोभा देता है? व्यक्ति के बिना धन की कोई शोभा नहीं है, व्यक्ति के बिना जन की भी कोई शोभा नहीं है, व्यक्ति के बिना किसी पदार्थ की शोभा नहीं है। हमारे बिना जिसकी शोभा नहीं होती उसके द्वारा हमारे चित्त की जलन मिट जाएगी, हृदय की जलन मिट जाएगी, असंभव बात है। भगवान श्री राम अनंत ऐश्वर्य संपन्न है और लीला में अयोध्या के राजा है, परम वैभवशाली नगरी के महाराज है, सार्वभौम सम्राट है। परंतु सीता वियोग का दुख तो उनका कथा श्रवण से ही मिटा है और कोई उपाय नहीं था। और वो कथा श्रवण भी भगवान ने किन से किया है अभी लीला के द्वारा पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी लव और कुश के द्वारा किया है जो भगवान से बहुत छोटे हैं। लीला में वो पुत्र है और भगवान की दृष्टि से अभी अज्ञात है। भगवान ने लव और कुश को इसलिए बुलाया था कि तुम आओ और तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे मुंह से हमको ये कथा अच्छी लगती है। लव और कुश से ही भगवान ने कथा क्यों सुनी? इसलिए सुनी कि जिनके मन में राग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ऐसे निर्विकार हृदय से जो कथा निकलती है उसका स्वारस्य ही अलग होता है। इसीलिए तो संकादिकों का उपदेश भी सब लोग सुनते हैं। भगवान ने भी दोनों से कथा सुनी है, सुन रहे हैं। आओ उसी कथा के क्रम में अपने लोग भी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की सेना के साथ सागर के किनारे पहुंचते हैं और कथा प्रसंग में अपने लोग एक बार लंका के लिए भी छलांग लगा लेते हैं। विभीषण जी महाराज ने रावण को समझाया कि महाराज आपको ये चाहिए कि जिस बानर का उत्पात आपने देखा है उसका स्वामी कितना शक्तिशाली हो सकता है। आपको निरपराध सीता का हरण करके बड़ा भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है, अतः आप हनुमान से डरे हुए आज हम सब लोगों से तरह तरह की बातें पूछते हो। हमारे विचार से आपको सीता राम को दे देनी चाहिए। रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, रावण ने सभा का विसर्जन कर दिया और अकेले में जब रावण अपने महल में गया तो रावण का छोटा भाई होने के कारण विभीषण जी उनके महल में गए और अकेले में रावण के पास जाकर बड़ी नम्रता से उन्होंने समझाया था। रावण ने इतना स्वीकार किया कि कल हमारे यहाँ सभा भवन में हम सब सभा वालों के बीच में बैठकर कोई निर्णय करेंगे। अब आगे की कथा का शुभारंभ करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि लंका नरेश राजा रावण सीता में अपनी बड़ी प्रीति दिखा रहा था। उसने अपने द्वारा किए हुए पाप को अपने मन में ही रखा और वो वैदेही का चिंतन करता हुआ सीता के प्रेम में डूबा हुआ जब उसका युद्ध के अंदर समय दिखाई दे रहा है कि अब हमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तब रावण ने अपने सभा के अंदर बड़े बड़े मंत्रियों को, सुरीदों को, सबको उसने बुलाया और स्वयं भी सभा भवन की ओर चला। राजाओं के भाई खुद के रहने के मकान अलग होते थे, सभा भवन अलग होते थे। तो वो राक्षसराज रावण एक सोने के रथ के ऊपर बैठ करके जिसमें घोड़े जुते हुए थे उसमें बैठ करके अपने महल से रवाना होकर सभा भवन की ओर गया। रावण के चलते हुए असंख्य असंख्य सेना के सैनिक आगे पीछे दाएं बाएं तरह तरह के शस्त्र लिए हुए चल रहे थे। राक्षसों का स्वरूप बड़ा डरावना था, परंतु राक्षसों के वस्त्र और राक्षसों के आभूषण दूर से ही जगमगाते रहते थे। वे राक्षस इतने सावधान थे कि कोई आकाश से भी रावण के ऊपर
शस्त्र न बरसा दे। वे ऐसे राक्षस प्रवीण थे युद्ध के अंदर कि वे सब प्रकार की माया को भी जानने वाले थे। कोई आकाश में छिप करके भी आए तो भी उस माया को पहचानने वाले राक्षस लोग वहां पर बराबर रावण के पास सेवा में थे। कोई घोड़ों पर बैठे हैं तो कोई हाथी के ऊपर बैठे हैं तो कोई पैदल चल रहे हैं। ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में ये लोग चल रहे थे और उस समय बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। उस समय में शंख बज रहे थे और उस समय में जिनके पास में जो संकेत था उस संकेत से सब लोगों को सूचना दे रहे थे। रावण के पीछे एक छत्र लगाया हुआ था, जिस छत्र के नीचे बैठा हुआ वो बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रावण के पीछे चंवर डुलाए जा रहे थे। राक्षसराज रावण व्रत के अंदर एक बहुत ऊंचे आसन के ऊपर बैठा हुआ था। लोग दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानते थे और जिन जिन लोगों के द्वारा उनके उसका दर्शन होता था वे सब लोग तरह तरह से रावण के विषय में जय जयकार करते थे। इस प्रकार से रावण बड़े उत्साह के साथ उस सभा भवन में प्रवेश किया। रावण के प्रवेश करने पर और भी जितने उनके साथ आए थे वे भी प्रवेश किए। 600 पिशाचों ने रावण के पास में ही घेरा डाल करके अपना स्थान रखा और फिर महल के अंदर महल माने सभा भवन के अंदर और अंदर इस प्रकार जो खास बैठने की जगह थी वहां जाकर रावण अपने स्थान पर बैठ गया। रावण के अलावा दूसरे लोग भी आए, उनको लाने के लिए कई बगीचों में गए, कई पर्वतों में गए, कोई महलों में गए। सब अपने अपने साधनों से रावण की आज्ञा सुनकर के उनके मंत्री वगैरह अपने अपने साधनों से जल्दी जल्दी रावण के सभा भवन में प्रवेश करने लगे। ऐसे ऐसे उसके मंत्री थे कि जो संपतवीर वीरु रुचे वे दौड़ते दौड़ते नहीं किसी साधन पर नहीं उड़ते उड़ते आए जैसे कोई गरुड़ जी उड़ते हैं। इस प्रकार से वो उड़ते उड़ते आए और बड़े आदर के साथ रावण का अभिवादन अभिनंदन किया और जिनका जहां स्थान निर्धारित था सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। एक तरफ मंत्री लोग बैठे, एक तरफ अमात्य लोग बैठे, एक तरफ शूरवीर बैठे, सेनापति बैठे और अपने अपने स्थान पर सब लोग बैठ गए थे। रावण के पास में एक और स्थान था। इधर विभीषण जी महाराज अपने सुंदर रथ पर बैठ करके बड़े यशस्वी विभीषण जिनकी आकृति में बड़ी सौम्य भावना थी वे रथ में बैठ करके जब सभा भवन में आए तो सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सभा भवन में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। सुख और प्रहस्त ने उनका आदर किया और एक अच्छे आसन के ऊपर विभीषण जी महाराज बैठ गए। फिर यथा योग्य सबका सम्मान हुआ। वहां उस सभा के अंदर बड़ी विशेषता ये थी कि जो भी कोई बोलता था वो झूठ नहीं बोलता था। वहां कोई आक्रोश से नहीं बोलता था। सभा की मर्यादा थी कि कोई भी व्यक्ति वहां अपनी भावनाओं को प्रकट करने में सीमा का उल्लंघन नहीं करता था। सभा सदो नापि जजलपुर रुचई, जोर जोर से प्रतंडा वितंडा करना ये करना ऐसा कुछ नहीं था। सब मर्यादा में रहते थे। अपनी बात को बड़े शालीन ढंग से वहां पर प्रकट किया जाता था। रावण ने देखा कि सभी सभा के अंदर उपस्थित हो गए हैं, तब रावण ने वहां प्रहस्त को सूचना करते हुए कहा कि सेनापति प्रहस्त सब प्रकार के शस्त्रों को जानने वाले जितने जितने हमारे योद्धा हैं उन योद्धाओं के पास हमारी आज्ञा पहुंचा दो कि इस लंका को सब प्रकार से वे सुरक्षित रखें और अपने शस्त्र लेकर इस लंका में सर्वथा विचरण करें और तैयार होकर रहें। जिनको जहां जिसके आधिपत्य में रहना है उसको वहां वहीं तक रहना है, ऐसे सेना का ठीक विभाग करके उनको अपने अपने सैनिक दे दो और शस्त्र भी दे दो। उसके बाद अपने यहां विचार का कार्यक्रम चालू करेंगे। प्रहस्त ने कहा कि ठीक है महाराज, अभी मैं आता हूं। प्रहस्त गए और उनके जो प्रधान प्रधान सेनापति थे उनसे बैठ करके उन्होंने जो है अलग अलग बातचीत की और बातचीत करके सबको अपना अपना काम सौंप दिया। प्रहस्त दोबारा सभा भवन में आकर रावण से कहने लगे कि महाराज आपके आदेश का पालन हो चुका है और लंका की रक्षा का पूर्ण प्रबंध हो चुका है। आपको लंका की रक्षा के विषय में कोई विचार नहीं करना चाहिए। अब सब प्रकार से रावण ने देखा कि हमारी रक्षा हो रही है। तब रावण सभा के अंदर बोलता है, हे मेरे सभासदों, जीवन में बहुत बार सुख के अवसर और दुख के अवसर आए हैं। कई बार नुकसान भी हुआ है, कई बार लाभ भी हुआ है। कई बार प्रिय घटनाएं हुई हैं, कई बार अप्रिय घटनाएं हुई हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो। धर्म के पालन में, काम के सेवन में और अर्थ के उपार्जन में कितनी कितनी कठिनाइयां आती हैं और कितनी सुगमता होती है, ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है। सभी कार्यों में आप लोगों ने सदा मेरा साथ दिया है और जब जब भी मैं आप लोगों से विचार विमर्श करके कुछ भी कार्य किया हूं तो मेरे कार्य कभी भी निष्फल नहीं हुए। आप लोगों के आधार पर ही मैंने चंद्रमा को नक्षत्रों सहित चंद्रमा नक्षत्र ग्रह इनके द्वारा मरुदगणों के द्वारा जिस प्रकार से इंद्र सहायता पाते हैं, ऐसे आप लोगों से सहायता पाकर के मैंने बहुत बड़ी लक्ष्मी उपार्जित की है। आज मैं लंका का राजा कहलाता हूं। मैं आप लोगों की कृपा से सब कुछ कार्य करने में समर्थ हूं और जिस कार्य के लिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, इस कार्य के लिए मैं पहले भी आपसे विचार विमर्श करना चाहता था, परंतु उस समय मेरा भाई कुंभकर्ण सोया हुआ था। कुंभकर्ण 6 महीने में 1 दिन के लिए जगते हैं और उसके बाद वापस सो जाते हैं। आज हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे अनुज कुंभकर्ण इस समय जगे हुए हैं और आज हमारे साथ इस सभा के अंदर विराजमान है। देखो, आपको मालूम है कि मैं दंडकारण्य में गया और राम की प्रिय भारिया का मैंने हरण किया। क्यों हरण किया ये भी शायद आपको मालूम है कि हमारी ही 14,000 सेना दंडकारण्य में थी, जिसके स्वामी मेरे भाई खरदूषण थे। राम के ऊपर जब हमने आक्रमण करवाया उनसे, तो राम ने 14,000 सैनिकों को मार दिया। शत्रु का बदला लेना शत्रु का काम होता है, भाई के मारने का बदला लेना भाई का काम होता है। जब राम ने बिना किसी भय के 14,000 सेना का नाश किया, तो मैं भी बिना किसी भय से उसकी स्त्री को ले आया। परंतु ये स्त्री इतनी पतिव्रता है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी धर्म में रहने वाली है कि वह मुझे स्वीकार नहीं करती है। वो तो केवल राम को स्वीकार करती हुई है। संसार के अंदर जैसी मैंने सीता स्त्री देखी है, ऐसी स्त्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है।
सौंदर्य दृष्टि से मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उसके भाव की दृष्टि से देखता हूँ। लंका का राजा जिसको मनाए और वो न माने, ऐसी स्त्री आज पहली है, उसका नाम सीता है। सुंदरता में भी वो बहुत सुंदर है, परंतु असल में देखा जाए तो सीता का जो भाव है, उस भाव के सामने मेरी कोई शक्ति चल नहीं पाई। शरीर से तो वो पतली है और उसके होठ बिंब फल के समान है, स्वर्ण के समान लाल है, और उसके चरण बड़े सुंदर हैं, नाखूनों में ललाई है, चमकती हुई अग्नि है उसके अंदर से, जो जगजग करते हुए जो चिंगारे निकलते हैं, उन चिंगारों जैसी उसकी शोभा है। नाक भी ठीक है, नेत्र भी ठीक है, केस भी ठीक है, इन सब को मैं देखता हूँ तो मेरे मन में ये बात आती है कि आखिर ये क्या है, मैं सीता को प्राप्त क्यों नहीं कर सका। तो सीता को जाकर मैंने तरह तरह से प्रलोभन दिया है और डर भी उसको दिखाया है।